हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के नौवे अध्याय की चर्चा चल रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का वर्णन श्री शुकदेव गोस्वामी करते हैं। पिछले दो तीन दिनों से हम इस लीला की चर्चा करते आए हैं। कल चर्चा ये हो रही थी कि माता यशोदा एक दिन दही का मंथन कर रही थी और मंथन करते करते श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं के बारे में जो गीतों की रचना हुई थी उन्हें गा रहे थे। उस समय सारे घर के नौकरानियां सब इधर उधर अन्य कार्यों में व्यस्त थीं, इसलिए माता यशोदा ने स्वयं दही का मंथन करना प्रारंभ किया। और वैसे माता यशोदा ने स्वयं मंथन करना शुरू इसलिए भी किया कि वात्सल्य भाव से संबंधित ये एक जिद था कि मुझे ही श्री कृष्ण के लिए मक्खन घी आदि तैयार करना चाहिए अपने हाथों से, और कोई नहीं कर पाएगा। वैसे दही तो बहुत था, अनेक पात्रों में दही था और इनमें से लाखों लाखों गायों में से जो 9 लाख गाय नंद महाराज के पास थे, इनमें से सबसे जो श्रेष्ठ गाय थे उनको ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक घास खिलाया जाता था जिसके द्वारा उनका दूध भी उतना ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। विशेष गुण उस दूध में आ जाते थे। तो नंद महाराज के 9 लाख गायों में से ऐसे चुन चुन कर 7-8 गाय जैसे हो जाते थे, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। और ये 7-8 गाय और अधिक संख्या भी होती थी, और भी अच्छे अच्छे गाय होते थे, वो इतने दुर्लभ थे कि जैसे मानो कोई घोड़ा हो जिसका केवल एक कान काला हो। वैसे कितने घोड़ों को आपने देखा है जिनका केवल एक कान काला है? वैसे आजकल घोड़े भी ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे घोड़े जिनका एक कान काला है ये तो विरला ही कहीं दिखाई पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो विशेष गाय थे जो कि सबसे स्वादिष्ट मीठा और पौष्टिक दूध प्रदान करती थी, उनसे दूध लेकर माता यशोदा दही बनाती थी। और ऐसे अनेक दही के पात्र हुआ करते थे। तो इन अनेक दही के पात्रों में से, मटकों में से वो सबसे स्वादिष्ट और अच्छे दही को स्वीकार करते थे और उसका मंथन करना शुरू करते थे। तो ऐसे ही माता यशोदा कर रहे थे। और फिर इसका मक्खन बनाकर फिर श्री कृष्ण को खिलाना चाहती थी। माता यशोदा चिंतित रहती थी कि यहाँ हमारे इतने सारे गाय हैं और इतना अच्छा और स्वादिष्ट मक्खन आदि यहाँ मेरे घर में बनता है, मैं स्वयं बनाती हूँ, फिर भी मेरा पुत्र श्री कृष्ण पड़ोसियों के पास में जाके ब्रज में सारे गोपियों के घर में जाके माखन दही इत्यादि चोरी करता है। ये क्यों करता है चोरी? क्या मेरे घर में जो दही है माखन है वो स्वादिष्ट नहीं है? तो ठीक है, मैं इसको इतना स्वादिष्ट दही बनाऊंगी, इतना स्वादिष्ट मक्खन बनाऊंगी कि कि मेरा कान्हा कहीं और चोरी करने के लिए नहीं जाएगा। तो इस उद्देश्य से माता यशोदा ने नंद महाराज के 9 लाख गायों में से चुन चुन कर, कितनी कठिनाई हुई होगी चुनने के लिए आप कल्पना कीजिए, ऐसे चुन के फिर उनसे दूध लेकर उनको सबसे पहले अच्छे अच्छे घास खिलाकर, जड़ी बूटियां औषधियां सब खिलाकर, फिर उनसे दूध लिया, उनसे फिर दही तैयार हुआ और सबसे अच्छा दही उसका मंथन माता यशोदा करने लगे। तो ये है माता यशोदा का प्रेम कि वो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ श्रेष्ठ चाहती थी, बेहतर से बेहतर। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए हम भी जो करते हैं वो अच्छा से अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोग उनको अर्पण किया जाना चाहिए, भले सरल हो यथाशक्ति, परंतु हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि ये भोग स्वादिष्ट हो, भक्ति भाव से किया गया हो। श्रृंगार जो करते हैं भगवान का वो भी बहुत अच्छा हो, जितनी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, जितनी योग्यता जितनी कला भगवान ने हमें दी है उसका पूरा पूरा प्रयोग करके अच्छे से अच्छे वस्तु भक्ति भाव से बनाकर उन्हें अर्पण करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वैसे कई बार लोग पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या भगवान को इन सब मंदिरों की आवश्यकता है? तो आप लोग इतना पैसे खर्च करते हो भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए, तो यही पैसे यदि किसी गरीब व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन आप लोग पैसे व्यर्थ गंवा रहे हैं मंदिरों का निर्माण करने में, ऐसे कई लोग कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि यदि अधिकतर इन लोगों को ज्यादा धन मिल जाए तो सबसे पहले अपने लिए बड़ा घर बनाएंगे, सही है ना? जब तर्क करने के लिए आएंगे कहेंगे आप भगवान के लिए इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं, लेकिन जब उनके पास धन आ जाए किसी कारणवश, व्यवसाय अच्छा निकला जो भी है, किसी तरह से भी भूखू पैसा आ गया, तो सबसे पहले अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदेंगे, घर को अच्छी तरह से सजाएंगे, बड़ा मकान लेंगे, खुद बड़ा बंगला बनवाएंगे, अपने लिए खूब खर्च करेंगे। तो जब गरीबों को देने की बात आती है तो वो केवल भक्तों के लिए होता, अपने लिए नहीं होता। वो हम नहीं करेंगे, आपको करना चाहिए, हम अपने लिए खर्च करेंगे। तो देखिए ऐसी भावना होती है लोगों की। और दूसरी बात, अपने लिए घर बड़े घर बनाने में कोई संकोच नहीं होता, भगवान के भी मंदिर बनाने में संकोच होता है। यहाँ एक देश के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या एक प्रांत के राज्यपाल भी हों, जो राजभवन होता है या राष्ट्रपति भवन होता है हमारे देश में, कितना ऐश्वर्यशाली निवास स्थान होता है वो, कितना बड़ा मकान होता है, महल है, राजमहल, और इतने एकड़ों में बहुत बड़ी जमीन, बड़े बड़े उद्यान बगीचे, शानदार, कितना बड़ा होता है। ये तो केवल एक प्रांत के, एक छोटे से प्रांत के राज्यपाल के लिए या एक देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए। तो इसके लिए कोई संकोच नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, आपत्ति नहीं उठाते हैं, परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड के पति भगवान के लिए जब मंदिर बनाया जाता है तब विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी एक प्रकार की ईर्ष्या है, अज्ञान से उत्पन्न होने वाली, इसलिए ऐसे विरोध करते हैं। भगवान क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं उनके लिए हर दृष्टि से अच्छे वस्तु प्रदान करने चाहिए। जब अपने लिए हम अच्छा घर बना सकते हैं तो भगवान के लिए अच्छा घर क्यों नहीं बनाना चाहिए। भगवान के लिए जब हम अच्छा घर बनाएंगे तो हमारे लिए गोलोक वृंदावन में भगवान अच्छा घर बनाएंगे। और ऐसे भगवान का घर बनाकर लोग आकर्षित होते हैं आने के लिए, और फिर वो भक्ति मार्ग में आते हैं, फिर उनके लिए भी गोलोक वृंदावन में घर की तैयारी होनी शुरू होती है। छोटे छोटे सेवा से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ के भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता हूं, परंतु यदि मैंने ऐसे किया तो क्या आप मेरे पास आओगे सुनने के लिए भगवद गीता या श्रीमद भागवत? नहीं आओगे। जब कोई बड़ा ऐश्वर्यशाली मंदिर का निर्माण होता है तब लाखों की संख्या में लोग आते हैं उस मंदिर के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर, और उस समय फिर एक उपयुक्त वातावरण बन जाता है उनको श्रवण करने के लिए भगवान की कथाओं का। तब जो साधु लोग होते हैं फिर वो कथा कर सकते हैं, कुछ भगवान के बारे में कुछ लोगों को उपदेश दे सकते हैं। तो ये सब भगवान की सेवा के लिए है, भगवान के गुणगान के लिए है, जो कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है। समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान की हर दृष्टि से बेहतर सेवा करना, यही परोपकारी कल्याण है, परोपकारी कार्य है, सर्वोच्च परोपकारी कार्य है, जिसके द्वारा लोगों को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त हो सकती है और वो सदा के लिए दुखों से कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो माता यशोदा के इस तरह से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दूध दही मक्खन घी आदि तैयार करने में हम ये सबक सीख सकते हैं कि कैसे हमें भगवान के लिए अच्छे से अच्छी चीजें प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छे चीजें हम अपने लिए इस्तेमाल करें और बचे हुए चीजें फिर भगवान को दे दें। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की भक्ति बुढ़ापे में केवल करनी चाहिए। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में केवल नौजवान लोगों को ले आते हैं भक्ति में, जबकि ये उनके भोग करने का समय है, और ऐसे समय में आप उनको तपस्या करने में लगाते हो, हरि नाम लेने में लगाते हो, ये तो बुढ़ापे की बात होनी चाहिए। परंतु विचार कीजिए, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं कि अच्छे से अच्छे वस्तु हमें भगवान को देने चाहिए। तो जब हमारा शरीर तरुण अवस्था में होता है तब शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुद्धि तीव्र होती है, स्मृति शक्ति अच्छी होती है, शक्ति बल सब कुछ होता है, और हम भगवान की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जब हमारा शरीर इतना उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, तो जो बल बुद्धि आदि का प्रयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए वो हम केवल अपनी सेवा के लिए करें, अपने भोग के लिए करें, और फिर जब ये शरीर बुढ़ापे में व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तब हम भगवान के पास जाएं कि हे प्रभु, अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, अब आपके शरण में आए हैं। तो इसका क्या मतलब है? जाइए, अच्छी भावना है। जब शरीर अच्छा है हम भोग करेंगे, जब शरीर भोग के लिए व्यर्थ हो जाता है तब भगवान के सामने जाके कहते हैं अब हम आपके शरण में आए। ठीक है, बुढ़ापे में भी हमें करना चाहिए अवश्य, बाल्यावस्था में, बचपन में, तरुण अवस्था में, बुढ़ापे में, हर अवस्था में जीवन के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यदि किसी को युव अवस्था में भगवान की भक्ति करने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ और देर में ही काफी बड़े आयु में ही वो आते हैं भगवान के भक्ति में, तो ठीक है, भले उस समय से शुरू करें, परंतु जिनका सौभाग्य है कि बचपन से ही शुरू करें, उनको क्यों रोका जाना चाहिए। तो ऐसी अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं समाज में, तो उनका खंडन ऐसे तर्कों से हमें करना चाहिए ताकि लोग समझें कि उनके मनमाने ढंग से जो वो विचार करते हैं वो ठीक नहीं है। हमारे जीवन का भी सर्वश्रेष्ठ जो समय है युव अवस्था, वो भी भगवान के लिए ही अर्पण किया जाना चाहिए। तो खैर, ऐसे माता यशोदा गीत गाती थी और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि जिस तरह से माता यशोदा अपने दैनिक कार्यों को करते करते श्री कृष्ण का चिंतन करती थी, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करती थी, गीत गाती थी, और इस तरह से वो 24 घंटे कृष्ण भावना भावित थी, उसी तरह से जो अब साधक हैं, जो भक्त हैं, जो भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो भी इसी तरह से माता यशोदा के पदचिन्हों में चलें और 24 घंटे भगवान के गुणगान करने का अभ्यास करें। जैसे कोई व्यापार करते हैं, अपने दुकान में बैठे हैं, ठीक है, दुकान में कभी कभी इधर उधर समय खाली मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सुबह से रात तक सांस लेने के लिए भी समय नहीं मिलता है, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत समय इधर उधर मिल जाता है। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कीर्तन गुनगुनाते रहना चाहिए, बीच में समय मिला तो जप कर लेना चाहिए। जो गृहिणियां हैं, जो घर में रहती हैं, घर की सेवा करते करते, रसोई करते हुए, घर की सफाई करते हुए हम गुनगुना सकते हैं भगवान के भजन, भगवान की कीर्तन, तरह तरह के श्लोक हैं भागवत के, गीता के, उनका पाठ कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं करते हैं अपनी किताबों का, जब समय मिले अपने चित्त का शुद्धिकरण ऐसे कर सकते हैं। इसलिए संगीत का प्रयोग भक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। संगीत तो केवल भगवान की सेवा के लिए ही बनाया गया है, और संगीत में ढंग से जब भगवान का नाम लिया जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अलग अलग रागों में जब भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है तो भगवान नाम के कीर्तन में रुचि बढ़ जाती है, रस बढ़ता है। इस तरह से हमें भी अभ्यास करना चाहिए कि जब हम अकेले बैठे हैं या कोई काम में व्यस्त नहीं है तो बस जप करना है, कीर्तन करना है, श्लोकों का पाठ करना है, कुछ न कुछ ये न केन प्रकार मन कृष्ण निवेशये, ऐसे सतत अपने मन को, अपने इंद्रियों को इत्यादि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को समाप्त करते हैं इस वाक्य से कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के पथ में रहना चाहता है उसे माता यशोदा जैसे भक्तों के पदचिन्हों में चलना चाहिए, जो कि 2400 घंटे कृष्ण भावना भावित रहा करती थी। माता यशोदा को श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ पता ही नहीं रहता था। तो जब माता यशोदा ऐसे दही का मंथन कर रही थी तो सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर ढंग से माता यशोदा का वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि माता यशोदा कैसे दिख रही थी इस समय। तो आइए सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में सुनते हैं कि माता यशोदा उस समय कैसे दिख रहे थे। ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है, केवल अनुवाद पढ़ रहे हैं। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में तगड़ी बांधे, माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनके चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से घिले थे। उनकी भौवें अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालित के फूल गिर रहे थे। तो ये चित्र हमारे सामने शुक्रदेव गोस्वामी ने रखा है माता यशोदा का, कि जब वो दही का मंथन श्री कृष्ण के लिए कर रहे थे। और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य यहां देते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य रस में प्रेम करना चाहते हैं, तो उन्हें माता यशोदा के इस वर्णन को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक समझ लेना चाहिए और इस रूप का, इस दृश्य का चिंतन मनन सतत करना चाहिए। और प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं यहां पर कि ऐसा नहीं है कि हम माता यशोदा बनने का प्रयास करें, ये एक अपराध हो जाएगा। जिस तरह से भगवान बनने का प्रयास करना, बन तो कभी नहीं सकते हैं, परंतु भगवान बनने की इच्छा और भगवान बनने का प्रयास, ये एक अपराध माना जाता है। ये मायावाद शास्त्र सिद्धांत है। वैसे भगवान हम कभी नहीं बन सकते, केवल भगवान के सेवक बन सकते हैं, भगवान के भक्तों के भक्त बन सकते हैं, यही हमारे जीवन की सफलता है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के निकट के पार्षद हैं, विशेष करके उनके माता, उनके पिता इत्यादि, ये स्थान जो है ये निश्चित है, कोई स्थान खाली नहीं है। भगवान के माता पिता का स्थान खाली नहीं है गोलोक वृंदावन में कि हम जाके उस स्थान को भर लें। हम माता यशोदा नहीं बन सकते, नंद महाराज नहीं बन सकते, और नहीं हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे सोचना भी अपराध हो जाएगा, ये भी मायावाद दर्शन ही है। परंतु माता यशोदा और नंद महाराज के पद चिन्हों में चलना चाहिए, उनकी तरह बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो प्रगत भक्त हैं, ये बहुत आगे बढ़े हुए भक्त हैं, उनको इस वर्णन को बहुत ध्यान से अपने हृदय में रखना चाहिए, एक अनमोल रत्न के समान अपने हृदय में रख के इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए कि किस प्रकार से माता यशोदा ने वस्त्र पहने थे, किस प्रकार से वो परिश्रम कर रही थी और पसीना आ रहा था, किस प्रकार से सुंदर ढंग से फूलों से सजा हुआ था उनके 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 बाल कैसे सजे हुए थे इत्यादि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे वर्णन का पूरा पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए, माता यशोदा के वात्सल्य भाव का चिंतन करने के लिए, विशेष करके उन भक्तों को जो भगवान का प्रेम, भगवान को वात्सल्य रस में प्रेम करना चाहते हैं। तो ऐसे माता यशोदा कर रहे थे मंथन। और अब देखिए ये वृंदावन का कार्य है। अब आप देखेंगे कि मंथन करने का जो कार्य है इसमें तरह तरह के आवाजें आती हैं। वैसे तो बांस का बना हुआ होता है और जब उसका मंथन फिर हम करके रस्सी से खींचते हैं तो टप 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 ऐसे आवाज आता है। तो साथ साथ में ये धक धक आवाज है, क्या है, जो बांस का बना हुआ होता है, जो माथनी होती है वो बांस का बना हुआ होता है। और आप तो जानते हैं कि बांस के ऐसे टुकड़े होते हैं, ऐसे पट्टी होता है जिसमें दो सर के समान है, तो ये बिल्कुल मृदंग के समान है। मृदंग जैसे ठक 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 आवाज आता है, तिकताम तिकताम। तो ऐसे जब माता यशोदा दही मंथन कर रही है तो ठक 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 मान लीजिए कि मृदंग बज रहा है। और माता यशोदा के कर कमलों में चूड़ियां बहुत है, छिंग 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 आवाज आती है जब वो हिला रही है करताल की तरह, जैसे करताल कीर्तन में बजाते समय छिंग 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 आवाज आती है। साथ साथ में माता यशोदा गीत भी गा रही है। तो माता यशोदा का ये दृश्य, जबकि वो दही मंथन कर रही हैं, गीत गा रही हैं, तो ये हरिनाम संकीर्तन के समान है। तो समझ लीजिए कि जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हुए, करताल बजाते हुए, गीत गाते हुए, तो इसमें और माता यशोदा के दही मंथन करने में कितनी सुंदर एक समानता है। आचार्य ने ऐसे एक सुंदर टीका की है इसके बारे में, विचार करने के लिए बहुत सुंदर बात है। तो खैर, माता यशोदा ऐसे किए जा रही थी दही का मंथन। उधर श्री कृष्ण पास वाले कमरे में सो रहे थे और नींद से जागे। नींद से जागकर वो उठे, भूख लगी थी, तो वो चले आए माता यशोदा के पास। वहां पर आकर मथाने को उन्होंने पकड़ लिया, जो छड़ी होती है जिससे रस्सी बांधकर घुमाया जाता है, तो उस मथाने को श्री कृष्ण ने पकड़ लिया, रोक दिया। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की इच्छा थी कि माता यशोदा मंथन करना बंद कर दे और वो उनके ओर ध्यान दे। मुझे भूख लगी है, मेरे भूख को मिटाओ, ये दही मंथन बाद में कर लेना। तो माता यशोदा के दिव्य आनंद की वृद्धि करने के लिए और एक बहुत विशेष लीला को संपन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने सामने आके ऐसे किया। माता यशोदा सोचने लगी, ये बच्चा कितना बुद्धिमान है। वो समझ गया है कि यदि मुझे रोकना है तो मथाने को पकड़ लेना चाहिए ताकि मैं उसको मंथन नहीं कर सकूं। फिर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आलिंगन किया, अपने गोदी में ले लिया और श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने लगी बड़े स्नेह से। उधर श्री कृष्ण का चेहरा हसमुख था, श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो गए थे कि माता ने मुझे गोदी में ले लिया है, अब मुझे दूध पिलाने वाली है, अब मेरी भूख मिट जाएगी। और माता का स्नेह भी था तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न थे। तो माता यशोदा बड़े स्नेह से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर रहे थे और जैसे ही वो दूध पिलाने लगे श्री कृष्ण को, उन्होंने देखा कि उन्होंने दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा था, दूध पूरी तरह से उबल गया था। अचानक आवाज आने लगी चूल्हे से। माता यशोदा ने सोचा कि अब मुझे तुरंत वहां जाना चाहिए और दूध के पात्र को चूल्हे से उतार कर नीचे रख देना चाहिए, नहीं तो दूध जल जाएगा। तो माता यशोदा ने क्या किया, तुरंत श्री कृष्ण को नीचे रखा। हालांकि श्री कृष्ण की भूख अभी तक मिटी नहीं थी, श्री कृष्ण पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी माता यशोदा ने स्वयं श्री कृष्ण को, जो कि उनके गोदी में थे, उठाया, अलग रख दिया और सीधे अंदर भागी, दूध के पात्र को चूल्हे से उतारने के लिए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि स्वयं श्री कृष्ण अपने हाथों में हैं और कोई दूसरा कार्य करने के लिए श्री कृष्ण को छोड़ के चले जाते हैं। जो कृष्ण भक्ति के तौर तरीकों से और गुह्य तत्वों से भली भांति परिचित नहीं है, वो इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, वो भ्रमित हो जाएंगे। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं, वो जानते हैं कि माता यशोदा जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, पार्षद होते हैं भगवान कृष्ण के, वो जो भी कार्य करते हैं वो सर्वोच्च दिव्य स्नेह से प्रेरित होते हैं। उनका हर एक कार्य प्रेम के द्वारा ही प्रेरित होता है, कृष्ण के लिए ही। तो माता यशोदा जब उठी थीं, तो कृष्ण की सेवा करने के लिए ही उठ गईं। उन्होंने कृष्ण को नीचे जमीन पर रख दिया और कृष्ण को छोड़कर चली गई, तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही उठ के चली गई। वैसे माता यशोदा का प्रेम इतना तीव्र है कि उन्होंने यदि श्री कृष्ण को अलग से रख दिया, श्री कृष्ण को के से दूर थोड़ी बहुत थोड़े समय के लिए चली गई, तो ये भी केवल तीव्र प्रेम के प्रभाव में है। जब कोई साधारण भक्त कभी कृष्ण को भूल जाता है या कृष्ण को छोड़ के चले जाता है, तो ये हो सकता है कि वो माया के प्रभाव में पड़ के भगवान को छोड़ गया है। परंतु माता यशोदा जब ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ती है तो वास्तव में छोड़ती नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण ही है। इसलिए माता यशोदा का और एक नाम है कृष्णमयी। राधा रानी का नाम भी कृष्णमयी है। कृष्णमयी का मतलब है कि वो कृष्ण की माँ है और साथ साथ उनके समस्त चित्त में कृष्ण ही समाये हुए हैं, कृष्ण से पूर्ण है वो। कृष्णमयी का शब्द होता है, का अर्थ होता है कि वो कृष्ण से पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ जानती ही नहीं है, उनका जीवन पूर्णतया कृष्णमय है, इसलिए वो उनका नाम है कृष्णमयी। तो जब वो श्री कृष्ण को छोड़कर जाती है तो ये भी प्रेम के प्रभाव में ही है और श्री कृष्ण के लिए ही है। साधारण भक्त जब श्री कृष्ण को छोड़कर जाते हैं तो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करने चले जाते हैं, परंतु माता यशोदा जो भी कुछ करती थी केवल श्री कृष्ण के लिए ही करती थी। वैसे श्री प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि साधारण जीवन में भी देखा जाता है कि कभी कभी हमें किसी एक कार्य को करने के लिए एक दूसरे कार्य को जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ के जाना पड़ता है, और कभी कभी एक ही समय कई कार्य होते हैं करने के लिए, तो हमें चयन करना पड़ता है कि हमें ये कार्य करना है या वो कार्य करना है। और ये दुविधा या ये चयन या ये निर्णय भक्तों को भी कृष्ण की सेवा में कभी कभी करना पड़ता है। जैसे कि अब हम जप करें कि हम प्रसाद पाएं, हम प्रवचन में बैठे कि हम जाके अर्च विग्रह की सेवा करें, मंदिर मार्जन करें, या अभी हम बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ें। अभी ऐसे निर्णय भक्त को कई बार लेने पड़ते हैं, दिन भर लेने पड़ते हैं, और ये भक्त का कर्तव्य होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम के स्तर पर कि वो कई चीजों को पहले करना है उनको और अन्य चीजों को बाद में करना है। जैसे प्रातः काल में जब हम उठते हैं तो हमारा सर्वप्रथम कार्य होता है भगवान का नाम संकीर्तन करना और जप करना। फिर हम सोचे कि हमें अभी मंदिर के हिसाब किताब के बारे में कुछ करना है, सेवा करनी है, वो बाद में करना है। लेकिन प्रातः काल में भगवान का दर्शन करके भगवान का नाम संकीर्तन करना, तो समय के अनुसार देश काल पात्र के अनुसार भगवान की अनेक सेवाएं होती हैं और भक्तों को चयन करना पड़ता है कि इस समय इस परिस्थिति में हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए। तो निर्णय कैसे लिया जा सकता है? जितने परिपक्व भक्त हम हो जाते हैं वैसे वैसे भगवान हमें बुद्धि देते हैं निर्णय लेने के लिए कि इस समय कौन सी सेवा करना हमारे लिए उचित होगा। और प्रभुपाद जी भगवत गीता के उस महत्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषां मतलब उनका, किनका, जो कि सदैव श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन मनन आदि करते हैं। मच्चित्ता मत्कत प्राणा बोधयन्तस् परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों की परिभाषा देते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 10वें अध्याय में, और ये है भक्तों की परिभाषा। मच्चित्ता, उनके चित्त में केवल मैं ही हूं। मत्कत प्राणा, मैं उनका प्राण धन हूं। बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं। और जब भक्त लोग परस्पर आपस में मिल जाते हैं तो केवल मेरी कथा करते हैं, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन चिंतन मनन करते हैं, ये भक्तों की पहचान है। तुष्यंती च रमंती च, केवल ऐसे कार्यों में ही भक्त आनंद लेते हैं। भक्तों का सुख यही एकमात्र है। भक्तों का सुख जो अभक्त हैं वो नहीं समझ सकते हैं। क्या आप लोग दिन भर हरे कृष्ण हरे राम करते हो? आप लोग इतना मंदिर में रोज 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 जाते हो, क्या है उसमें? समझ में नहीं आता उनको। वो अलग दुनिया में रहते हैं, भक्त लोग अलग दुनिया में रहते हैं। जब तक वो भक्त नहीं बनेंगे तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि भक्त लोग क्यों बार बार मंदिर भागते हैं और भक्त लोग क्यों बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों के लिए सबसे बड़ा आनंद है कि जब वो तुलसी दल को चंदन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करते हैं, इससे उनको बहुत सुख मिलता है। लेकिन जो अभक्त है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये भी कोई सुख है। पहली बात तो ये है कि वो भगवान के विग्रह को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि ये विग्रह विग्रह नहीं है, केवल एक प्रतिमा है, पुतली है। तो ऐसे पत्थर की पुतली के सामने आके, प्रतिमा के सामने आके कोई पत्ता डालना, कोई चंदन डालना, इससे क्या आनंद मिलता होगा इनको? इनको समझ में नहीं आता। केवल जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु भक्त होते हैं, उनको पता होता है कि कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है भगवान की ऐसे छोटी छोटी सेवाओं को करने में भी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, इसलिए वो हमेशा ऐसे कार्यों में रत रहते हैं और इसी में आनंद लेते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो तेषां, तो ऐसे भक्तों की बात, क्योंकि ये अगला श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषां, इनके लिए, किनके लिए? मच्चित्ता मत्कृत प्राण, जिनका वर्णन अभी अभी हम कर चुके हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो सतत मेरी सेवा में लगे हुए हैं और मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं प्रीति पूर्वकम, प्रीति से, प्रेम से। ददामि, मैं उनको भेंट देता हूं, बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग का भेंट उनको देता हूं, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ये न माम उपयान्ति ते। तो जैसे जैसे भक्त भक्ति में परिपक्व होने लगता है, वैसे वैसे अंतःकरण में स्थित भगवान श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन करते हैं। बाहर से भी गुरुजन और अनुवैष्णव उनको मार्गदर्शन करते हैं, सहायता करते हैं, प्रेरणा देते हैं, परंतु अंतःकरण में भी भगवान चुप नहीं बैठे हैं, बार बार प्रेरणा देते रहते हैं भक्तों को। तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जंतमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। फिर इसके बाद वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो कि परमात्मा के रूप में मेरे भक्त के हृदय में स्थित हूं, मैं उसके हृदय के भीतर जितना भी अज्ञान का अंधकार है उसको नष्ट कर देता हूं और ज्ञान का दीप में प्रज्वलित उसके हृदय में कर देता हूं। और जब ज्ञान का दीप अपने हृदय में आ जाता है तो सारा दुख, सारा कष्ट, सारा अज्ञान, सारे गलत भ्रांतियां इत्यादि सब खत्म हो जाती है और केवल प्रेम ही प्रेम, कृष्ण प्रेम रह जाता है। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, इसी तरह का प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, बल्कि एकमात्र उद्देश्य है। तो जैसे जैसे हम हृदय पूर्वक निष्कपट भाव से, नम्रता से भक्तों के संग में रहकर हम साधन भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, वैसे वैसे अंतःकरण में और भगवान मार्गदर्शन करते हैं। वैसे सद्गुरु गुरुजनों का कार्य होता है हमें हमारे अंतःकरण में स्थित हुए भगवान परमात्मा से मिलाना, ये इनका कार्य होता है। अभक्तों के हृदय में भी भगवान विराजमान रहते हैं, परंतु अभक्त भगवान को हृदय में स्थित पहचान नहीं सकते, परंतु जब हृदय शुद्ध होता है फिर गुरुजनों के द्वारा हम अपने हृदय में स्थित भगवान को जान सकते हैं कि हाँ भगवान हृदय में हैं, और फिर भगवान प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं ऐसे प्रगट भक्त को। तो माता यशोदा तो साधारण भक्त है नहीं, और सर्वोच्च शिखर भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर माता यशोदा स्थित है, इसलिए उनको तो स्वाभाविक उनका प्रेम जो है उनको इधर उधर कार्य में ले जाता है। जब ऐसे भक्ति की अवस्था में होते हैं तो भक्त के कार्य उसके स्वयं के नियंत्रण में नहीं होते हैं। देखिए भक्ति की खूबी ये है कि भक्त भगवान के हाथ में, या ऐसे कहना चाहिए कि भगवत प्रेम के हाथ में एक कठपुतली बन जाता है। वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं चलता, परंतु उसके सारे कार्य प्रेम से प्रेरित होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन की ओर जा रहे थे, 3 दिन लगातार वृंदावन की ओर चले जा रहे थे, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं चला कि दिन है या रात है, उनको पता नहीं चला कि खाना है पीना है सोना है, उनको पता नहीं चला किस दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में भी जा रहे हैं कि नहीं, ये भी नहीं पता चला। प्रहलाद महाराज के बारे में भी ऐसे बताया जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, बस प्रकृति भगवान के आदेशों के अनुसार प्रकृति उनके शरीर के द्वारा सारे कार्य करा लेती थी, स्नान करना भोजन करना सोना उठना, मान लीजिए कि अपने आप ये सारे कार्य होते रहते थे। वो तो इन चीजों से इतने परे थे कि उनका चित्त केवल भगवान में समाया हुआ रहता था। तो माता यशोदा तो जानती हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भगवान अंदर से ही उनको प्रेरणा दे रहे थे और बाहर से वही भगवान बाहर बैठे हैं उनकी गोदी में। तो अंदर से वो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि मुझे, मैं बाहर भी बैठा, मुझे छोड़ दो और चूल्हे पे जाओ वहां दूध उठाओ। तो माता यशोदा की कोई गलती नहीं है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में कहते हैं कि हृदय से हृदय में स्थित भगवान जो है वो भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं कि उनकी सेवा में पहले चीज क्या करनी चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। तो खैर श्री कृष्ण आए उनके पास, जब श्री कृष्ण रहे वहां पर माता यशोदा दूध को संभालने के लिए चली गई तो श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया कि अरे मेरी भूख अभी मिटी नहीं और बस ऐसे मुझे मेरी अनुमति के बिना यह मुझे छोड़ के चली गई अंदर मेरी माता। तो गुस्सा आया और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गुस्से के कारण यह उन्होंने अपने लाल ओठों को अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, मानो कि वो बहुत क्रोधित हो गए हैं। और मृषा अश्रु झूठे आंसू उनके आंखों में आ गए। कभी कभी देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रोना शुरू कर देंगे तो सबको करुणा आ जाएगी और उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो छोटे से बच्चे हैं वो कभी कभी झूठे आंसू निकालते हैं, बहुत आसानी से वो पड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी मृषा अश्रु दृशत अश्वना रह जहसा, फिर ऐसे एक पत्थर को उन्होंने उठाया और अपने आंसू झूठे आंसू बहाते उन्होंने जिस मटके में दही था जिसका मंथन माता यशोदा कर रही थी पत्थर लेकर उसको तोड़ दिया और उस थोड़े दही को हाथ में लेकर वो दूसरे कमरे में एकांत में जाके उसका सेवन करने लगे। इस दुनिया में लोग छोटे छोटे बच्चों के क्रीड़ाओं को, मस्ती को, खेल आदि को, उनके तोतली बोली को आदि देखना बहुत पसंद करते हैं। जिस घर में छोटा बच्चा होता है चाहे वो भगवान के भक्त भी क्यों ना हो, अधिकतर बातचीत तो बच्चे के बारे में ही होती है। बच्चे ने आज क्या किया, अब कैसे किया, कैसे हंसा, क्या किया, क्या बोला, क्या नहीं किया, क्योंकि बच्चों का स्वरूप है बहुत आकर्षक होते हैं और लोग बहुत जल्दी से उनके हृदय में स्नेह उत्पन्न हो जाता है बच्चों के प्रति। जब साधारण बच्चों के प्रति ऐसी भावना है तो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जो कि पहले से ही सर्व आकर्षक हैं और वो ऐसे शिशु बन जाते हैं तो कितने आकर्षक हुए होंगे। और ऐसे जब झूठे आंसू बहाते बहाते वो क्रोध कर रहे थे तो उस समय कितने आकर्षक लगे होंगे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने लीला का आनंद ले रहे हैं, स्वयं भी ऐसे लीला का आनंद लेना चाहते हैं और साथ साथ अपने भक्तों को, विशेष करके उनको जो कि वात्सल्य रति में हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ऐसे कार्य करते हैं। तो प्रश्न उत्पन्न ये होता है, अरे ऐसे कहा जाता है कि साधुओं को क्रोध को वश में करना चाहिए, लेकिन यहां साधुओं की बात तो दूर है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्रोध कर रहे हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण का क्रोध नकली है या असली है? भगवान श्री कृष्ण का क्रोध तो असली है। क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, जब भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है तो क्रोध अच्छा होता है। जैसे हनुमान जी ने क्रोध का प्रयोग किया श्री रामचंद्र की सेवा में, अर्जुन ने क्रोध का प्रयोग किया श्री कृष्ण की सेवा में कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर। परंतु कब भगवान की सेवा में क्रोध का प्रयोग करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वो हमारे भक्ति के परिपक्वता के ऊपर निर्भर है। केवल मनमाने ढंग से हम कहें कि अब हम गुस्सा हो जाएंगे और किसी को डांट लेंगे, नहीं। हनुमान जी कर सकते हैं, अर्जुन कर सकते हैं, तो क्रोध बुरा नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं तो उनके क्रोधित होने में और उनके कृपालु स्वरूप में, उनके प्रेम के कार्य में कोई अंतर नहीं है। भगवान का क्रोध, भगवान का प्रेम, ये सब एक ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। तो माता यशोदा ने चूल्हे के पास जाकर दूध के पात्र को उतार दिया। उतारने के बाद फिर वहां पर वापस चली आई देखने के लिए कि चलो अब श्री कृष्ण को दूध पिलाना है। तो जब वो आई तो क्या देखती है कि तहस नहस कमरे में मच गया है, मटका टूट चुका है, छोटे छोटे टुकड़े मटके के हो गए हैं, सारे कमरे में दही फैला हुआ है और उस दही में से श्री कृष्ण के पद चिन्ह भी दिख रहे हैं और श्री कृष्ण कमरे में नहीं है। तो माता यशोदा तुरंत सही निष्कर्ष पर पहुंची कि ये कृष्ण का कार्य है। दो चीजें उन्होंने देखी, एक कि मटका टूटा हुआ है और दो कि कमरे में कृष्ण नहीं है। इसलिए समझ गए कि ये कृष्ण का कार्य है, कृष्ण ने ऐसे करके फिर इस कमरे से वो भाग चुका है। तब माता यशोदा जो है जहास, सुख सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं स्व सुतस्य कर्म जहास तम च, स्वसुत कर्म कि ये मेरे ही पुत्र का कर्म है ये, और ऐसे देखकर वो मुस्कुराने लगी कि बच्चे ने फिर से शरारत की है, ठीक है अब देखते हो। तो फिर माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे पीछे गई। श्री कृष्ण के पीछे जाने में श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि पहले तो श्री कृष्ण के चरणों में, चरण कमलों में नूपुर थे, उनके कमर में भी छोटे छोटे घंटियों की पट्टी थी। तो जब भी श्री कृष्ण चलते थे तो घंटियों की आवाज, नूपुर की आवाज सुनाई देती थी। तो इसलिए माता यशोदा ने उस आवाज जहां बज रहे थे वो वहां चली गई। साथ साथ में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, सब जगह दही फैला हुआ था, तो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते देखते पीछे पीछे चली गई। तो जब माता यशोदा आई तो देखा कि एक कमरे में श्री कृष्ण है, एक उखल था वहां पे, उखल आप जानते हैं, आजकल तो उखल होते नहीं है, सब इलेक्ट्रिक यंत्र होते हैं आजकल, मिक्सर ग्राइंडर सब होते हैं। पहले तो उखल आदि हुआ करते थे, छोटे और बड़े, कभी कभी बड़े उखल भी थे। तो ऐसे उखल को उल्टा रखा गया था और इसके ऊपर श्री कृष्ण चढ़ गए थे, और वहां पे जो भी उनके पास दही मक्खन आदि था वो बंदरों को बांट रहे थे, और ये बंदर बड़े आनंद से श्री कृष्ण के साथ आके इस चोरी में शामिल हो रहे थे, और दोनों अच्छे ढंग से बस पेट भर के खा रहे थे। तो जैसे चाहते वैसे किसी को मक्खन दिया, किसी को दही दिया, और ऊपर जो टंगा हुआ मटका था दही का, उसको भी तोड़ के उसमें से वो बांट रहे थे। लेकिन साथ साथ जब कोई चोर होता है तो वो हमेशा तनाव में रहता है। जब कोई चोरी करता है, चोरी करते समय, करने के पहले भी तनावपूर्ण रहता है कि कोई मुझे पकड़ न ले, देख न ले। चोरी करने के बाद जब भाग जाता है तब भी तनाव में रहता है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कहीं पुलिस मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। तो उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ चोर तो श्री कृष्ण, हर चीज के सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण भी चिंतित थे, काफी तनाव में थे, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। इधर उधर पीछे देख रहे थे कि कहीं माता यशोदा को आ तो नहीं रही है, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही वो मटका तोड़ा था। तो इधर उधर देखते देखते वो बहुत सुंदर लग रहे थे, जिस समय की माता यशोदा उस कमरे में प्रवेश कर गईं। और जैसे ही माता यशोदा ने श्री कृष्ण को देखा तो फिर बड़े सावधानी से हल्के कदमों से श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ने लगी, पीछे से आई। और हल्के कदमों से इसलिए आ रही थी कि श्री कृष्ण को पता नहीं चले कि माता यशोदा पीछे है, ताकि वो जाके अचानक श्री कृष्ण को पकड़ ले और उसको दंड दे दे। तो जैसे ही वो धीरे धीरे पीछे से आ रही थी तो हाथ में छड़ी थी श्री कृष्ण को दंड देने के लिए, तो अकस्मात श्री कृष्ण ने पीछे घूम के देख लिया कि माता यशोदा आ रही है, तो मक्खन मक्खन सब छोड़ दिया और नीचे कूद पड़े उखल से। उधर थोड़े कौवे अंदर भी आए थे, वो भी श्री कृष्ण के मित्र थे। तो अब जब कौवों ने देखा कि माता यशोदा आ गई है तो वो उड़ के भाग गए, तो उनके आवाज से सावधान हो गए श्री कृष्ण। तब पीछे देखा, अरे माता माता आ रही है, तो वहां से कूद पड़े और कूद के भागने लगे, और वो बहुत भयभीत हो गए थे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि ऐसे बड़े बड़े योगी जन हैं जो कि भगवान को परमात्मा के रूप में पकड़ लेना चाहते हैं अपने हृदय में ध्यान के द्वारा, और जो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं जो कि बहुत कड़ी तपस्या के द्वारा भगवान के निराकार स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, फिर भी वो असफल होते हैं। योगी जन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु माता यशोदा ये सोचकर कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, वो श्री कृष्ण का पीछा करने लगी उनको पकड़ने के लिए। पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना सोप्यस्ति यत् प्रपद सीन्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविंद मादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे कई योगी जन होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद भी असफल हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अंगूठे के अग्र भाग तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे गोविंद या श्री कृष्ण के चरणों में मैं नमन करता हूं, ऐसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो वो जो बड़े बड़े योगी और ज्ञानी लोग नहीं कर पाते हैं, उससे कहीं अधिक एक साधारण गांव की महिला जैसे माता यशोदा कर पा रही हैं। वो अब क्रोध से अपने पुत्र को दंड देने के लिए पीछे भाग रही हैं श्री कृष्ण के, और वो आगे चल के सफल भी हो जाने वाली हैं, परंतु ये योगी और ज्ञानी लोग सफलता नहीं प्राप्त करते। और इतना ही नहीं, योगी जन और जो ज्ञानी होते हैं भगवान से डरते हैं, सभी लोग डरते हैं भगवान से। हम जब एक बार मायापुर गए थे तो कलकत्ता में एक अखबार का विज्ञापन हमने पढ़ा, और बंगला में था परंतु हिंदी में उसका अनुवाद बता रहे हैं। तो ये अखबार वाले ये बताना चाहते हैं कि हम हर चीज का खुलासा कर देते हैं, किसी से डरते नहीं है। इसलिए उनके विज्ञापन में एक वाक्य था, भगवान के अलावा किसी से हम डरते नहीं है। कहने का मतलब कि चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई नेता हो, कोई उद्योगपति हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई जो भी हो, बड़ा धनी व्यक्ति हो, कोई बात नहीं, हम किसी से डरते नहीं। जो सत्य है हम सत्य को ही छापेंगे हमारे समाचार पत्र में, केवल एकमात्र भगवान से डरते हैं। तो ये बताने के लिए कि हम पुण्यात्मा हैं, हम अच्छे लोग हैं, भगवान से डरते हैं लेकिन और किसी से नहीं डरते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी लोग भगवान से डरते हैं। यहां तक कि ऐसे श्लोक है, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। उपनिषदों का श्लोक है जिसका अर्थ है कि भगवान से डर कर वातः पवते, पवन बहता है, भगवान के डर से भीषो देति सूर्यः कि सूर्य अपने उष्णता और प्रकाश को प्रकट करता है। भगवान के डर से भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च, अग्नि भी अपनी उष्णता प्रदान करती है और चंद्र भी अपने शीतल किरणों को प्रदान करते हैं। मृत्यु धावति पंचमः, और भगवान के डर से ही मृत्यु हर एक प्राणी का पीछा करता है। दूसरे शब्दों में भगवान से डर के ही बड़े बड़े जो लोकपाल आदि होते हैं, देवगण भी होते हैं, वो भी अपने अपने कार्यों में रत रहते हैं। देखिए, यदि डर नहीं होता ना इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, तो कोई चीज नहीं हो पाता, कोई भी अपना कार्य नहीं करता। हम गाड़ी चलाते हैं, नियमों का पालन करते हैं किसी डर से, ठीक से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो अपघात हो जाएगा, हानि पहुंचेगी, मृत्यु भी हो सकती है, तो डर से गाड़ी ठीक से चलाते हैं। यह लाल बत्ती है तो उस समय रुकना चाहिए, नहीं रुकेंगे तो हवलदार हमें पकड़ के दंड देगा। तो छोटी सी चीजों को लेकर बड़े चीजों तक सब कार्य हमारे भय से प्रेरित होते हैं। भय नहीं होता तो कोई भी अपने अपने कर्तव्य नहीं करता, और यह सच बात है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि ये सबसे प्राथमिक स्थान है चेतना का, जब व्यक्ति भय से प्रेरित होकर कार्य करता है। इससे आगे चल के व्यक्ति सोचता है कि नहीं, भय से नहीं, किसी प्रलोभन को प्राप्त के द्वारा वो करता है, किसी चीज को चाहता है, कोई पैसा चाहिए, कोई भोग चाहिए, कोई प्रलोभन के कारण फिर वो कार्य में रत रहता है। तो वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो केवल भय के कारण कार्य कर रहा है। फिर इससे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो अपना कर्तव्य मानकर कार्य करता है। मैं एक अध्यापक हूं, मुझे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए, चाहे कोई जांच करने आए मेरे बारे में या नहीं, हाजिरी चाहे लिखनी पड़े नहीं लिखनी पड़े, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य करना चाहिए। मैं एक अध्यापक हूं, मुझे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। मैं एक व्यापारी हूं, मुझे मेरे ग्राहकों की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। मैं एक भक्त हूं, मैंने दीक्षा ली है, तो मैंने मुझे आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है। तो कम से कम एक सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्तव्य के स्तर से प्रेरित होकर कार्य करे। तो भय, लोभ और कर्तव्य, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रेरणा का स्रोत है प्रेम, भगवत प्रेम। इस दुनिया में भी देखा जाता है, इस दुनिया का प्रेम भी सबसे ऊंचा भौतिक स्रोत है कार्य के लिए। एक बार एक हमने सच्ची कहानी है कि एक महिला थी, ये अमेरिका की बात है, कि वो खेती में थी और देखा कि उनका बच्चा वो नदी की ओर जा रहा है, और नदी में जब वो गया तो एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। जब मगरमच्छ को पकड़ती हुई देखा अपने बेटे को, तो वो महिला पागल सी हो गई। तो दरवाजे से नीचे सीढ़ियों से आके, फिर दरवाजे से बाहर आके, फिर भागना, इसके लिए कहां समय था। इतना प्रेम था उस बच्चे के प्रति कि वो उस पहले मंजिल की खिड़की से कूद पड़ी। चोट भी पहुंची होगी, दर्द भी हुआ होगा, लेकिन अपने दर्द की परवाह नहीं की, पैर में कुछ भी हुआ होगा, लेकिन किसी न किसी तरह से तेजी से भागकर वो नदी के तट पर गई, या तालाब था या जो भी कुछ। वहां पे मगरमच्छ ने बच्चे के पैर को पकड़ लिया था, जैसे कि गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो माता ने देखा मगरमच्छ बहुत भयंकर है, साधारण अवस्था में कोई मगरमच्छ के पास भी नहीं जाता, लेकिन ये माँ को प्रेम के कारण इतना साहस मिला, इतनी निर्भयता हो गई उसके हृदय में, कि सीधे जाके मगरमच्छ को लात मारने लगी और बच्चे को खींच के बाहर निकाल भी दिया उसे। साधारण अवस्था में ऐसे नहीं कर सकती थी वो। केवल लोभ के कारण व्यक्ति इतना साहसी नहीं बन सकता है, इतना निर्भय नहीं बन सकता है। तो इस दुनिया में भी देखा जाता है कि प्रेम एक दुनिया का प्रेम है, वो कितना प्रबल है, कितना बड़ा एक प्रेरणा स्रोत है कार्य करने के लिए। तो जब इस दुनिया का प्रेम इतना तीव्र होता है, तो फिर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और कितना तीव्र होगा, कितना ऊंचा एक प्रेरणा स्रोत होगा हमारे लिए। तो हमें चाहिए कि भय से हम ऊपर चलते चलते हम कम से कम कर्तव्य के स्तर पर स्थित हो जाएं और आगे चल के प्रेम के स्तर पर पहुंचे। ये सबसे श्रेष्ठ स्थान है चेतना का। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया में सभी लोग भयभीत हैं भगवान के या भगवान के प्रकृति के नियमों से, परंतु यहां देखते हैं कि स्वयं भगवान, जिनके डर से सभी लोग कार्य करते हैं, आज वही माता यशोदा से डर रहे हैं और डर के वो भाग रहे हैं। कितनी अद्भुत घटना है। इससे हम समझ सकते हैं कि माता यशोदा का स्थान कितना ऊंचा है। और श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि इस घटना से हम जान सकते हैं कि भक्तों में और योगियों में अंतर क्या है। योगी लोग भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं, हालांकि वो अनेक जन्मों तक तीव्र तपस्या करते हैं, परंतु माता यशोदा एक गांव में रहने वाली महिला, बाह्य दृष्टि से साधारण, परंतु हमें जानना चाहिए कि वो साधारण नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। फिर भी बाह्य दृष्टि से तो वो एक साधारण महिला है गांव की, और वो एक ऐसा कार्य संपन्न कर पा रही हैं जो कि बड़े बड़े आत्मसंयमी योगी और ज्ञानी जन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे हमें समझना चाहिए कि माता यशोदा कितनी महान है। भय भाव अनया स्थितस्य, जैसे कि कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है, योगी जन भगवान के पास आना चाहते हैं, सफल नहीं होते, परंतु माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने में सफल होती हैं। यह है भक्तों का स्थान। बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में बताया गया है कि जब वो अंधे अवस्था में अंधे थे, वो वृंदावन की ओर चले जा रहे थे, तो चलते चलते जगह जगह बार बार उनको पूछना पड़ता लोगों से कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है। अकेले थे तो बड़े कठिनाई से जा रहे थे। उस समय कोई रेलगाड़ी इत्यादि तो नहीं थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था। दक्षिण भारत से वृंदावन की ओर चलते चलते वो जा रहे थे। तब अचानक रास्ते में एक छोटा सा लड़का उनके पास आया, बहुत मधुर वचनों में कहने लगा कि बाबा आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा, मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, तो क्या मुझे ले जाओगे? हाँ अवश्य। तो उस बच्चे ने बिल्व मंगल ठाकुर को हाथ पकड़कर वो आगे चलना शुरू कर दिया। ऐसे अनेक दिन बीत गए, अनेक हफ्ते बीत गए। चलते 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 जब वृंदावन के पास आए, तब उस बच्चे ने ये नहीं बताया कि वृंदावन आ गया है। बच्चे ने कहा कि बाबा अब मेरा घर आ गया है, अब मुझे जाना होगा। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे छोड़कर नहीं जाओ। क्योंकि अब तक बिल्व मंगल ठाकुर को इस बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना प्रेम क्यों हुआ है मेरे हृदय में इस बच्चे के प्रति। और इस बच्चे से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहते थे वो, तो कहने लगे, नहीं नहीं तुम नहीं जाना नहीं। परंतु बच्चे ने बिल्व मंगल का हाथ छोड़ दिया और अब चला गया। तो बिल्व मंगल ठाकुर उसको ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ फैला रहे थे, देख तो नहीं पा रहे थे, परंतु हाथ को इधर उधर फैला के आशा कर रहे थे कि कहीं पकड़ में आ जाए ये लड़का, परंतु पकड़ में नहीं आए। तब बिल्व मंगल ठाकुर समझ गए कि ये दूर चले गए। लेकिन फिर वो कहने लगे, अब मैं समझ गया तुम कौन हो। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया, मुझे पता नहीं चला था कि तुम कौन हो, अब मुझे पता चला है। अब तुम्हारी धोखेबाजी चलेगी नहीं, अब तुम मेरे हाथ से और कपट कर रहे हो, मेरे साथ मुझे छोड़कर चले जा रहे हो, भाग गए हो मुझे छोड़कर। लेकिन मैं अंधा हूं और इसलिए मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। तो तुम चले गए हो ठीक है, परंतु वास्तव में तुम यदि बहुत शूरवीर हो तो तुम्हारे शक्ति का प्रदर्शन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे हृदय में जब मैंने तुम्हें पकड़ के रखा है, मेरे हृदय से भाग के तो दिखाओ, क्या कर पाओगे? इतने शक्तिशाली हो, मैंने तुम्हें मेरे हृदय में इस तरह से पकड़ के रखा है कि तुम किसी भी हालत में भाग के नहीं जा सकते। अगर वास्तव में शूरवीर हो तो हृदय से भाग के दिखाओ। और भगवान भाग नहीं पाए उनके हृदय से। यह है भक्ति की शक्ति। तो भक्त ही हैं जो भगवान को पकड़ के रख सकते हैं। यह है भक्ति की विशेषता। का शरीर काफी भारी था, आयु भी ज्यादा थी। कई वर्षों के बाद कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आए। अनेक वर्षों तक उनको संतान नहीं हुआ था। तो भारी शरीर से को लेकर वो साथ में जब भाग रही थी तो थक रहे थे, इतनी तेज गति से नहीं भाग पा रहे थे। परंतु श्री कृष्ण भी तो छोटे ही शिशु थे, वो भी इतनी तेजी से कहां भाग सकते थे, क्योंकि वो शिशु लीला कर रहे हैं। तो खैर, तो माता यशोदा ने अंततः पकड़ लिया श्री कृष्ण को, और भागने के कारण उनके बाल छूट गए और जो फूल उनके बालों में लगे हुए थे वो सब इधर उधर बिखर गए, परंतु श्री कृष्ण को पकड़ने में सफल हो गई। यद्यपि बहुत सारे बाधाएं बीच में आई, वो थक गई थी और श्री कृष्ण इधर उधर घूम फिर के भाग रहे थे, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, कभी बाएं दाएं, तो माता यशोदा के पीछे कभी इधर कभी उधर ऐसे भागते भागते अंततः कृष्ण को पकड़ पाई। और इस तरह से प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चाश्नु तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। कि केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। फिर ऐसे तत्त्वतः भगवान को जानने से हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो भक्ति का पथ कितना सुलभ है, कितना सुंदर है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस पथ में चलने का अहो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस दृश्य को सत्यव्रत मुनि ने अपने दामोदर अष्टकम में भी कहा है। दामोदर अष्टकम हम गाने वाले हैं। सबसे पहला श्लोक दामोदर अष्टकम का है, मेरे पीछे पीछे गाइएगा।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्। लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम्। यशोदभियो लोकलाद्धवमानम्। परामृष्टम् अत्यन्ततोद्धृत्य गोप्या।
तो सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम, मैं नमन कर रहा हूं। नमामि मतलब मैं कर रहा हूं नमन ईश्वरम। तो भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर कह के संबोधित किया है। सच्चिदानंद विग्रह है उनका। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, इसका मतलब है कि भगवान का रूप है। यह है शास्त्रों का प्रमाण। ऐसा नहीं कि केवल भगवान निराकार है, ईश्वरम है भगवान, साथ साथ में सच्चिदानंद रूप है उनका। सत चित आनंद से बनाया हुआ, सत अर्थात चिन्मय आध्यात्मिक वस्तु का बना हुआ, इन जड़ पदार्थों का बना हुआ नहीं। चित मतलब ज्ञान से पूर्ण है उनका शरीर, और आनंद से पूर्ण भी है। हमारा शरीर असत अचित और निरानंद है, जबकि भगवान का शरीर सत चित और आनंद है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम। उनके कानों में कुंडल है और वो कुंडल इधर उधर हो रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम, और गोकुल में ये श्री कृष्ण बहुत प्रकाशमान दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, चमक रहे हैं। उज्जवल शरीर उनका है, प्रकाशमान शरीर, सुंदर शरीर गोकुल में है। गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियो लुखला धावमानम। यशोदा भी यह माता यशोदा से डर के उलूखल, जो उखल है जिसके ऊपर चढ़े थे श्री कृष्ण, बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, जिस उखल से ऊपर से कूद के नीचे आए फिर भागने लगे, तो उस उखल से दूर भागे जा रहे थे। धावमानम यशोदा भी उलूखला धावमानम। और परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। गोप्य अर्थात यशोदा माता ऐसे श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगी, और भागते भागते पीछे से अंततः श्री कृष्ण के पास पकड़ के और पास में पहुंच के उनको पकड़ पाए। तो ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं नमन करता हूं, ऐसे सत्यव्रत मुनि कहते हैं। तो इस दृश्य को जो कि श्रीमद् भागवत में अभी वर्णित है, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की, इसको दामोदर अष्टक के पहले श्लोक में सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने एक टीका लिखी है इस दामोदर अष्टकम के ऊपर, दिग्दर्शनी टीका। बहुत सुंदर उल्लेख या वर्णन करते हैं या टीका करते हैं। वो कहते हैं कि इस श्लोक में अनेक विशेष बातें हैं, बहुत अद्भुत चीजें हैं, श्रेष्ठताएं बहुत हैं इस श्लोक के, पहले श्लोक के दामोदर अष्टक के। पहला है तत्व विशेष कि इस श्लोक में हमें पहचान मिल रहा है, भगवान का परिचय मिल रहा है कि भगवान ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है वो। ईश्वर का मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान है, जगत एक नाथ है, संपूर्ण जगत के नाथ हैं और वो निज प्रभु हैं। तो यह ईश्वर तत्व, तत्व विशेष, साथ साथ में रूप विशेष, भगवान के सौंदर्य का वैशिष्ट्य। प्रभुपाद जी भी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर प्रवचन देते समय कहते हैं कि ये दामोदर लीला में विशेष बात यह है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य है, दिखाई पड़ता है। श्री कृष्ण जब भयभीत होकर भाग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और फिर जिस तरह से उनके कानों में कुंडल हिल रहा है, उनके कपोल या उनके गाल चमक रहे हैं और उनकी आंखें आंसू से भरे हुए हैं, और जो काजल इत्यादि है वो बिखर गया है आंसुओं के कारण, तो ये सारा दृश्य जब माता यशोदा देख रही हैं और इसकी कल्पना सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं, तो बहुत श्री कृष्ण के सौंदर्य की अनुभूति वो कर रहे हैं। श्री कृष्ण के दिव्य शरीर पर अनेक गहने आभूषण आदि हैं, जैसे कि उनके कुंडल जो मकर के आकार में हैं, तो ये मकर कुंडल हिल रहे हैं। साधारण व्यक्ति आभूषण गहने आदि पहनता है अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए, परंतु सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये गहने और भी सुंदर हो रहे हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण के शरीर पर है, इसलिए मकर कुंडल और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि वो श्री कृष्ण के गालों के पास है। तो वास्तव में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर आभूषण तो श्री कृष्ण का ही शरीर है। तो ये है रूप विशेष। और फिर परिवार विशेष, श्री कृष्ण अकेले नहीं है। गोकुले शब्द का तात्पर्य है कि गोकुल में उनके साथ में कई और उनके पार्षद निवास करते हैं, उनके माता पिता हैं, अनेक गोप गोपियां हैं, उनके ग्वाल बाल मित्र हैं, गाय हैं, मोर हैं इत्यादि, तो उनका परिवार विशेष है, बहुत बड़ा एक परिवार है। साथ साथ में लीला विशेष, ऐसे लीला भगवान प्रदर्शित करते हैं कि डर के मारे वो भाग रहे हैं और उनकी माता जो उनकी भक्त है वो उनका पीछा कर रही है और पकड़ रही है उनको। अब केवल वृंदावन में ही ऐसी लीलाएं दिखाई पड़ती हैं, लीला माधुरी। क्या हम नरसिंहदेव भगवान के बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि नरसिंहदेव भगवान भाग रहे हैं और भक्त पीछे से पकड़ने के लिए जा रहे हैं? ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा, ऐसे सोचना भी हम विचार नहीं कर सकते। या अन्य जो धर्म है इनमें ऐसे कभी कल्पना हो भी सकती है? पहली बात तो भगवान का एक रूप है, दूसरी बात बाल रूप, तीसरी बात वो डर के मारे भाग रहे हैं, चौथी बात पीछे से आकर भक्तों को पकड़ लेते हैं। ये अद्भुत चीजें हैं, केवल श्रीमद् भागवत के कारण ही हम इन चीजों को जान सकते हैं, नहीं तो कहां ऐसे रहस्यमय तत्वों को हम जान सकते थे। तो लीला विशेष, साथ साथ में स्नेह विशेष। माता यशोदा का स्नेह इतना विशेष है, ये भी एक आभूषण है वृंदावन का। ऐसे प्रेम से युक्त भक्त भरे हैं वृंदावन में, प्रेम माधुरी यशोदा जैसे गोपियां हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दामोदर अष्टक के इस श्लोक में ये सारे वैशिष्ट्य हैं, सारे विशेष बातें हैं। तो आज हम थोड़ी देर में इस दामोदर अष्टक को पुनः गाएंगे। तो आज प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं और दो दिन है तो दामोदर लीला की चर्चा आने वाले दो दिनों में यहाँ हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।